अब उनको, अब वो लाजवाब तो हो गए, उनको तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि अब हम इस बात को कैसे इसको डिफ्यूज करें। और अगर ये प्रिवेल कर गया ये नजरिया, और ये इसी तरह सबने देख लिया और जवानों ने देख लिया कि हम तो लाजवाब हो गए, तो ये ना हो कि सब इसके पीछे लग जाए। तो जब आप बिल्कुल स्पीचलेस हो गए हैं आप, और कोई बात ही समझ नहीं आ रही, जवाब क्या दें, तो अब क्या होता है, कुफर के पास फिर एक ही हल होता है, वायलेंस, तशद्दुद, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मुशरिकीन ने किया फिर, कि बस जब बिल्कुल ही कोई उनको समझ नहीं आती थी अब करें क्या, तो फिर कालू हर्यकूहू, जला दो इसको बस, वंसुरू आलिहतकुम, और ये देखें मदद करो अपने माबूदों की, अपने इलाहों की। खुद इंसान अगर सोचे कि जिनकी मदद तुम खुद करोगे उनको बचाने के लिए, वो कैसे माबूद हो सकते हैं? जिनको हमें खुद बचाना पड़े वो कोई खुदा हो सकता है? देखिए तौहीद जो है ना, कोई ना भी बताए, इंसान खुद अपनी अकल भी इस्तेमाल करे तो इस बात तक पहुंच जाएगा कि खुदा एक ही है बस, और उसके सिवा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा मदद करो अपने इलाहों की, इनको बचाओ, इन कुन तुम फाइलीन, अगर हो तुम करने वाले, यानी अगर तुमने अब कुछ करना है तो आज ही करना है, आज चुप हो गए तो बस ये दीन गया हमारा, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो उनके दीन के परखचे उड़ा दिए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो उनका दीन का कुछ रहा नहीं था कि वो कोई बात कह सकते। तो अब उन्होंने कहा जो कुछ करना है ना आज ही करना है, बस इस मामले को अब यही खत्म करो कि इसको जला दो। और देखो सितम कितना बड़ा जुल्म, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप भी इसके अंदर शामिल था, कि जो इस सारी कार्रवाई में, और इसे, और उसने नहीं कहा कि नहीं, मेरा बेटा और इस तरह या कुछ भी बात करता नहीं। अब उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, कई दिन की कई हफ्तों की मेहनत के साथ उन्होंने बड़ा अलाव जलाया। अलाव मतलब मेरा कहने का है, यानी बहुत बड़ी आग जलाई। एक तो छोटी सी होती ना बॉन फायर, आप कैंपिंग में छोटी सी फायर देखते हैं, वो नहीं, बहुत बड़ी आग जलाई। और उसके लिए बड़ी चीजें इकट्ठी की, हर एक ला रहा था उसके लिए चीजें, और उस आग को जलाने के लिए कोई आसान थोड़ी होता है, उसके लिए कोई लकड़ियां जमा करनी होंगी, ये करना होगा, कोई बैठे बैठे तो नहीं जल जाएगी इतनी बड़ी आग। तो वो कहते थे कि अपने अपने खुदाओं को हमने बचाना है, तो फिर जाहिर है सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। और बीमार औरतें भी मन्नत मान रही थी कि अगर इनको शिफा हो जाए तो इब्राहिम को जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं वो हम लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर, यानी इतनी हद तक। और फिर जमीन में इन्होंने बहुत गहरा सा एक गड़ा खोदा और उसको लकड़ियों से भरा, और जब लकड़ियों का ढेर लग गया तो उसमें आग लगाई। अब कहा जाता है कि रुए जमीन पर इतनी बड़ी आग कभी पहले देखी नहीं गई थी, जो उतनी जिस जो उन्होंने जलाई थी, और आग के शोले थे। आप सोचें जब इतनी लकड़ियों को आग लगी तो क्या हाल होगा, आसमान से बातें कर रहे थे, इतनी ऊंचे थे। अब क्या हुआ, मुसीबतों से जला तो ली आग, अब इसके करीब कौन जाए, कौन जाके इब्राहिम डालने के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसको उनको फेंकने के लिए उसमें तो करीब तो जाना पड़ेगा ना, तो कौन इनके आग के करीब जाए और डाले, सारे डर रहे थे हम क्यों जाए। आखिर कहा जाता है कि शैतान आया उनके पास और कहा कि कोई मंजनीक तैयार उनसे करवाई, कि इस तरह की एक चीज बना लो, उसमें बिठा के झूले की तरह फेंक देना, ऐसे करके जैसे होता है ना फ्लिप करके, इस तरह से ऐसे आगे पीछे किया, उसके बाद शूट कर दिया उसको, के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया वहां से, तो इस तरह से करो तो तब कोई काम हो सकता है। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो ऐसे ही करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उन्होंने हाथ पैर बांधे और मंजनीक में डाला, अभी जुलाया होगा फेंकने के लिए, लेकिन हाथ पैर बांधे। आप कैन यू जस्ट इमेजिन, आप थोड़ा सा देखें, हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं वो एक बात नहीं बनेगी, जस्ट इमेजिन का जब ये वाकया हुआ होगा और उन्होंने कहा होगा लेकर आओ इसको सबके सामने और हम देखते हैं इसको, और जब ये सवाल जवाब हुए और ऐसे हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुर्रत से जवाब दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग खड़े होंगे, बाप भी खड़ा होगा और भी लोग खड़े होंगे, उनकी जुर्रत देखें, जबकि उनको पता है कि मैं हूं अकेला और ये हैं इतने सारे। अब ये इनके तो खुदाओं को बुरा मैंने कह दिया है, या ऐसी कोई बात कह दी है जो कि इनके खुदाओं के खिलाफ है, तो ये तो मेरा क्या हाल करेंगे? कोई छोटी बात थोड़ी थी। यानी आप दुनिया की सोच लें कि सारे इलाके के लोग एक तरफ और एक बंदा एक बात कह रहा है, और वो ऐसी बात कह रहा है जो उनके यहां बहुत बड़ा जुर्म है। अब आज कोई बहुत बड़ी सी बड़ी बात सोच लें कि कोई इंसान कह दे जो किसी मुल्क में जुर्म समझा जाता, क्योंकि ये इनका हुकूमत का एक मजहब होता था, नमरूद का ये मजहब था। कोई ये सिर्फ इन लोगों का नहीं था, ये पूरे कंट्री का मजहब था। और यानी जब वो आग जलाने के लिए जो जो कुछ हफ्ते ये मेहनत करते रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं बंद बैठे, वो तो नहीं आंखें बंद करके बैठे हुए कहीं पड़े हुए थे कि उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। पूरा इलाका उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरे एक जोश व खरोश के साथ, और इतना मजहबी एक फरीजा समझ के ये काम किया जा रहा है। तो जाहिर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता ही था कि ये आग जलाने के लिए कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसको ये फैसला हो गया है कि इसको आग में जला दो। तो कहीं भाग जाते कुछ करते, और अपने सामने देख रहे हैं इतनी बड़ी आग जला रहे हैं, फिर लेकर आ रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जस्ट इमेजिन के इंसान का उस वक्त क्या हाल हो कि इस आग में अभी मुझे डाला जाना। ये आप बाद में, ये जो हमें आज पता है भी आग हल्की ठंडी हो गई, ये हो गई, इस बात को अभी भूल जाएं, अभी सिर्फ इस बात को याद रखें कि वो टाइम जो होगा जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांधे जा रहे हैं और बाप भी उनमें शामिल है, उस वक्त एक इंसानी तौर पे ह्यूमनली आप सोचें कि इंसान कोई हमारे जैसा, कोई अल्लाह ताला माफ फरमाए लेकिन कोई इंसान हो, तो सोचें कि क्या हाल हो उस वक्त कि इसमें डाला जाना है, वो सब एक तरफ है। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जमीन व आसमान की जो भी मखलूक है ना, वो सब देख रही है और रो रही है कि या अल्लाह ये तेरे खलील के साथ क्या होने लगा। और कितनी मखलूक है जो उस आग को बुझाने के लिए, कहीं से चिड़िया आ रही है, कहीं से कोई और जानवर आ रहा है कि इस आग को बुझाया जाए। सिर्फ बताया जाता है कि एक छिपकली है जो कि वो फूंके मार रही थी कि आग और बढ़े, बाकी सब जानवर इसको बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो वो रो रहे हैं कि अल्लाह तेरे खलील के साथ ये होने लगा। तो अब जो है ना वो बांधा गया। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बारिश का दारोगा फरिश्ता जो था, वो कान लगाए हुए तैयार था कि कब अल्लाह का हुक्म हो और मैं इस आग पे बारिश बरसा के इसको ठंडी कर दूं। वो रेडी है, और सोचें कि आग इतनी जल रही है, और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाला गया और उनको झुलाया जा रहा है कि अब इसमें फेंकेंगे। और जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज इन द एयर, उनको अंदर डालने लगे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप मुझे कोई हुक्म दें तो मैं इसको बजा लाऊं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, फरमाते हैं कि अगर तो कि क्या अगर आपके ऊपर है तो नहीं, यानी आपसे अगर कोई कुछ काम करवाना है तो नहीं, इम्मा इलैका फला, नहीं आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? फरमाया हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह है ना वो काफी है, मेरे लिए वो है ना मेरा अल्लाह। आप सोचें कि उस वक्त का यकीन, वो भरोसा कि अल्लाह है ना, जब अल्लाह है तो वो मेरा बेहतरीन वकील है, वो काफी है मेरे लिए, मैं तुम्हें क्यों कहूं। और ये कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के ऊपर ऐसे थे कि मुंह के बल गिरने लगे हैं और बस जरा सा लम्हा रह गया है, तो कुलना या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, सुभान अल्लाह, तब अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, ए आग तू हो जा ठंडी, लेकिन सिर्फ ठंडी नहीं, सलामती वाली भी इब्राहिम अलैहि सलाम पर। अल्लाह हु अकबर। और ये कहा जाता है कि आग इस कदर फरमा बरदार है अल्लाह ताला की कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ फरमाते बर्दन आला इब्राहिम, ठंडी हो जाए इब्राहिम पे, तो इब्राहिम अलैहि सलाम उसकी ठंडक ना बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि वो इतनी ठंडी हो जाती है। और आपको पता है जब अगर बर्फ की तरह ठंडी हो जाए कोई चीज, तो उसमें भी इंसान मर जाएगा अगर डीप फ्रीजर में डाल दिया जाए उसको, तो अगर डीप फ्रीजर बन जाती। तो उसने इतनी ठंडी हो जाना था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया ठंडे होने के लिए, तो इतनी ठंडी हो जाती। और ये भी जिक्र आता है कि उस वक्त जिब्राइल अलैहि सलाम आपके साथ थे जब आपको डाला जाने लगा था, और आपके मुंह पे से पसीने पूंछ रहे थे, और बस इसके सिवा आपको आग ने कोई तकलीफ नहीं दी, यानी सिवाय इसके कि वो यानी पसीना आया था उनको, इसके सिवा जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल जो होता है ना बाल, वो भी नहीं जला, सिवाय सिवाय सुभान अल्लाह उस रस्सी के जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांधे हुए थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ऐसे मदद फरमाता है, और अल्लाह जिसके लिए चाहे दुनिया की आग को भी, या दुनिया में कई आगें होती हैं झगड़े की, गुस्से की, नफरतों की, तासुब की, जिसके लिए चाहे इस आग को भी ठंडा करते। कई लोगों की जिंदगियां ही आग बन चुकी होती हैं, इतनी ज्यादा उनकी जिंदगियां तकलीफ दे होती हैं, लेकिन अल्लाह चाहे तो इस आग को भी हुक्म दे दे, या नारुकुनी बर्दम सलामन, तो वो आग भी ठंडी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो अल्लाह के लिए उठ खड़ा होता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कैसे मदद फरमाता है। और फिर ये आता है इस आग के बारे में कि इस हुक्म के साथ ही रूए जमीन की सारी आग ठंडी हो गई। और हजरत काब अहबार फरमाते हैं कि उस दिन दुनिया में आग से कोई फायदा नहीं उठा सका, यानी सारी दुनिया की आग ही ऐसी हो गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें 40 या 50 दिन रहे, और फरमाया करते थे मुझे उस जमाने में जो राहत और सुकून सरूर हासिल हुआ, वैसा इससे निकलने के बाद भी कभी हासिल नहीं हुआ, और क्या अच्छा होता कि मेरी सारी जिंदगी इसमें गुजरती। और अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जो सबसे अच्छा कलिमा कहा ना, वो ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से जिंदा सलामत निकले थे, उस वक्त आपको अपनी पेशानी से पसीना पोंछते हुए देख के बाप ने कहा, इब्राहिम वाकई तेरा रब बड़ा ही बुजुर्ग और बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी वो भी मान गया ये बात, लेकिन ईमान फिर भी नहीं लेकर आया। और ये जो मैंने आपको बताया कि सारे जानवर आग को बुझाने की कोशिश करते, या कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दिन जो जानवर निकला वो आपकी आग को बुझाने की कोशिश करता रहा, सिवाय गिरगिट के, जो मैंने आपको बताया छिपकली की तरह होता है ना गिरगिट, रंग भी बदल लेता है वो, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट के मारने का हुक्म दिया। और यही कलमा जो हस्बी अल्लाह हुवा नेमल वकील है, ये कलमा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब आपको खबर मिली थी कि अरब जो है ना अबू सुफियान अपना लश्कर लेके वो आपके मुकाबले के लिए आ रहा है, तो लोगों ने कहा कि आप डर जाएं, सहाबा कराम से भी फरमाया कि डर जाएं, तो फजादू ईमानहुम, उनका ईमान और बढ़ गया, वकालू हसबुनल्लाहु वनिमल वकील, और वो सब कहने लगे हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन वकील है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वह अरादू बिही कैदम फजालना हुमुल अखसरीन, उन्होंने तो इरादा किया था चाल चलने का और हमने उन सब को खसारा पाने वाला बना दिया। अल्लाह ताला ने देखो उन्होंने क्या इरादा किया और अल्लाह का इरादा किया था, और होता वही है जो अल्लाह का इरादा होता है। वह नज्जैना हु वलूतन, और हमने निजात दी उसको भी, उसको भी बचा लिया, और लूत अलैहिस्सलाम को भी, किस तरफ, इल अर्द लती बारकना फीहा लिल आलमीन, उस जमीन की तरफ बचा के ले गए जिस जमीन में बरकत रख दी हमने तमाम जहान वालों के लिए। वो कौन सी जमीन है? वो अर्द मुकद्दस यानी शाम की सरजमीन, जो फलस्तीन का इलाका है, बैतुल मक़दस का इलाका है, बहुत बाबरकत इलाका है। और ये अर्ज़ मुकद्दस, जब शाम का इलाका मैं कहूंगी तो इसका मतलब सिर्फ जो आज का सीरिया वो नहीं है, बल्कि इसमें उस जमाने में फलस्तीन का इलाका, लबनान का, फिर ये शाम का भी और जॉर्डन का भी, कुछ वेस्टर्न तरफ का मगरबी इलाका जो है वो सारा इसमें शामिल होता है। तो अल्लाह ताला उस तरफ इनको ले गया। और ये बरकत वाली जगह क्यों कही गई है? इसलिए कि यानी जाहिरी तौर पे भी यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमतें हैं कि फल वगैरह, नहरें वगैरह, यहाँ की जमीन बड़ी बड़ी जरखेज है, यहाँ पे बड़ा कुछ उगता है, जो उगता है बड़ा अच्छा उगता है। और बातनी तौर पे भी इसमें बड़ी बरकतें हैं, क्योंकि इस ये मस्कन रहा है अंबिया का। अंबिया यहाँ पे रहते भी रहे हैं, कई अंबिया यहाँ पे पैदा हुए हैं और कई अंबिया यहाँ पे दफन है। तो इसलिए यानी रूहानी तौर पे भी इस जगह में बड़ी बरकत रही है। इसको कुरान ने बरकत वाली जगह फरमाया। और फिर वहबना लहू इसहाक, और हमने इसको इसहाक अता फरमाया। अब यहां पे देखें, सुभान अल्लाह, ये बात फौरन क्यों आई कि हमने उसको इसहाक अता फरमाया? इसलिए कि जब इंसान हिजरत करता है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वहां से हिजरत करके चले गए, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ लिविंग देयर। अब वो सारी बात तो उनके सामने कह दी, हुज्जत तमाम हो गई, उनको छोड़ के फिर उस इलाके से हिजरत कर ली और यहाँ पे आ गए। लूत अलैहिस्सलाम भी साथ हैं, हजरत सारा साथ हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इनको खुशखबरी दी इसहाक अलैहिस्सलाम की। अब देखें, हिजरत के बाद ही ये बात क्यों? इसलिए क्योंकि जब इंसान हिजरत करता है, किसी नई जगह पे जाता है, तो ठीक है ये भी फिक्रें होती हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे, क्या होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या चीज होती है जो इंसान फील करता है कि जो मैं पीछे छोड़ आया, वो है फैमिली। इंसान जो होम सिक होता है ना इंसान, वो इससे नहीं होता कि वो दीवारें मुझे अच्छी लगती थी, वो ये ठीक है एक हद तक अपने इलाके से होता है, लेकिन जो फैमिली आपने छोड़ी होती है ना, बाप अब इस मुल्क में आए अपने मुल्कों को छोड़ के, तो जब अपने मुल्क याद आते थे तो वहां पे क्या याद आता था? अपनी फैमिली, अपने खानदान, अपने रिश्तेदार, वो याद आते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये छोड़ा, अल्लाह ताला को पता है ना इंसान की नफ्सियात का, कोई बात नहीं यहाँ पे कही गई, लेकिन एक खदशा भी जो दिल के अंदर आ सकता है, कभी बात दिल में आ सकती है कि खानदान सारा वहां रह गया, ठीक है वतन छोड़ा, जमीन छोड़ी और काम सारा छोड़ा, सब छोड़ा, लेकिन जो एक चीज है कि हम अकेले हो गए, हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये होती है ना फीलिंग नई जगह पे जाने में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ फिक्र क्यों करते हो, हम जो तुम्हें इसहाक दे रहे हैं और इसहाक के बाद याकूब, वह याकूब नाफिला, और याकूब जायद, याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? पोते थे। पोता भी देंगे तुम्हें, तुम्हें बेटा भी देंगे, पोता भी देंगे। और जब इंसान के बेटे से ठीक है एक फैमिली बड़ी होती है बच्चों से, लेकिन जब इंसान के पोते पोतियां, नवासे नवासियां हो जाते हैं, तो वो खुद एक छोटा सा कबीला बन जाता है, एक छोटा सा खानदान बन जाता है। इसीलिए आप देखें कि आप किसी को इन्वाइट करें जो उसके उनके बच्चे छोटे हों या अभी मैरिड नहीं हो, तो फिर भी आ जाते हैं। जिनके आगे पोते पोतियां नवासे नवासियां होते हैं, वो इतने बिजी होते हैं उनके अंदर ही कि वो छोटी सी एक मिनी सी ट्राइब बन जाती है उनकी। वो तो अपने अंदर ही इतने आपस में मिलने जुलने में इतने रहते हैं कि वो कहीं बाहर जाने का उनको होता ही नहीं है। तो फिर इंसान ना यानी अपने खानदान में इतना मशहूल हो जाता है, वो एक खानदान नहीं एक एक कबीला हो जाता है वो, समझ लें। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी दी गई, तो वो जायद है, वो अल्लाह की तरफ से बोनस है, वो और मेहरबानी है कि अल्लाह ने देखो यहाँ पे ही आपको कबीला दे दिया, आपको वो जो लोग रह गए पीछे उनके लिए जरा भी नहीं सोचने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे अता कर देगा, आप फिक्र ही ना करें इसकी। और वो भी कैसी औलाद देगा? वह कुल्लन जालना सालेहीन, सबको हमने बनाया साले, पहले ही खुशखबरी दे दी। देखें पेरेंट्स को सबसे ज्यादा किस चीज की खुशी होती है या फिक्र होती है कि औलाद साले निकले, इसके लिए दुआएं भी करते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो जो दुआ ही आती है ना सूरह साफात में है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, वो औलाद की दुआ भी करते थे, तो फरमाते थे या अल्लाह सालिहीन में से देना, नेकोकार देना, सिर्फ ये नहीं मांगते थे अल्लाह दुआ औलाद दे देना, जो जब इंसान कम फहम होता है ना तो वो बस मांगता है बस औलाद दे देना, बस बच्चे हो जाएं, अब वो जैसे वैसे ही हो, नहीं, हबली मिन सालेहीन, अल्लाह नेकोकारों में से बस अता करना। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ भी पूरी फरमा दी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान की यानी एक बेफिक्री और एक और उसको बड़ी सबसे नेमत जो है वो नेक औलाद होती है, नेक औलाद। और इसकी पहले ही बशारत मिल गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह की खातिर कोई कुछ छोड़े तो फिर क्या अल्लाह ऐसे ही रहने देता है? वो उससे बढ़ के नवाजता है, इतना वो कदरदान है। उसका नाम है अश्शाकिर। शाकिर का मतलब क्या? कदरदान। उससे बढ़ के कदरदानी कौन कर सकता? तो अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे जो नोट करने का है वो ये कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने औलाद अता करने के लिए जो लफ्ज फरमाया वो है वहब ना। वहब किससे है? हिबा से। हिबा किसको कहते हैं? गिफ्ट को, राइट? कुराने करीम में जहां जहां भी औलाद देने की बात आती है ना, वहां पे अल्लाह ताला यही लफ्ज इस्तेमाल फरमाते हैं, वहबना, यानी हिबा का लफ्ज देते हैं। इसका मतलब है, हालांकि देने के लिए बहुत सारे और अल्फाज हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, पर यहां से पता चलता है कि औलाद जो है वो गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। और ये बात इस लफ्ज से हमें पता चल जाती है कि ये हमारे लिए गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने अता किए हुए। लेकिन क्या हम भी इनको गिफ्ट के तौर पे लेते हैं और गिफ्ट की तरह डील करते हैं इनसे? हम भी ऐसा समझते हैं इनके बारे में कि ये हमारे लिए गिफ्ट है और अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है? अल्लाह अकबर। तो हर एक को हमने साले बनाया, वह जाल ना हम आइम्मतन, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने बनाया उनको इमाम, यानी इमाम बनाया इनको। कैसे? कि ये यहदूना भी अमरीना, कि ये रहनुमाई करते थे हमारे हुक्म से, यानी अंबिया बनाया अल्लाह ताला ने इनको। लोगों की रहनुमाई का काम इनके जिम्मे लगाया। यानी कई लोग तो दुनिया के ओहदों को ही बड़ा समझते हैं ना, कि मुझे ये ओहदा मिल गया और ये पोजीशन मिल गई, ये मिल गया। अल्लाह ताला ने यहाँ पे सबसे बड़े ओहदे की बात फरमा दी। कई किसी जॉब में बड़े ओहदे को समझते हैं, कई सियासत में बड़े ओहदा समझते हैं, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं ये। हालांकि असल ओहदा ये है कि अल्लाह ताला किसी को दीन का इमाम बना दे लोगों के लिए, कि वो लोगों की रहनुमाई करे दीन के मामलात में अल्लाह के हुक्म के साथ। जैसे कुरान करीम में आता है ना, इससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। ये एक बहुत बड़ा ओहदा है कि राहबर बना दिया अल्लाह ने, रहनुमा बना दिया अल्लाह ने, और ये लोगों को गाइड करते हैं अल्लाह की तरफ, लोगों के दीन की बातें सिखाते हैं, बताते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और इनको हमने ये बनाया था। नेक तो थे ही, हिदायत का काम इनके जिम्मे दिया था। ये सारा जिक्र आ रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, जो अल्लाह ताला के इनामात है उनका, कि कैसी अल्लाह ने उनको औलाद दी और इनको सबको अल्लाह ने इमाम बनाया, इनको पैगंबरी भी दी। अच्छा, अब ये देखें, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुफर के इमाम होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो तौहीद के इमाम होते हैं, जो रहमान की तरफ बुलाने वाले होते हैं। और जो कुफर की तरफ या शर की तरफ बुलाते हैं ना, उनको भी इमाम कहा गया, लेकिन वो शर के इमाम है। इसी तरह जो खैर की तरफ बुलाने वाले होते हैं, उनको भी आइम्मा कहा गया, इमाम कहा गया, वो खैर के इमाम है। और अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखा दी है कि तुम खैर के इमाम बनने की दुआ करो, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। कौन सी दुआ है वो? रब्बना हब लना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रतु आयुनिम व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह, नेकों का इमाम बनाना हमें, खैर की बात पहुंचाने वाला, उसमें लीड करने वाला, ये दुआ बता दी कि ये दुआ किया करो। और जो ये ओहदा पाएगा ना लोगों का कि नेकी की बात बताने का, उसके इमाम बनने का, वो है नबियों का वारिस, क्योंकि नबियों वाला काम है। और किस चीज का इमाम बनाया, वो के एक तो रहनुमाई करते थे हमारे हुक्म के साथ, हमारा हुक्म आगे लोगों तक पहुंचाते थे। वह अवहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और वही की हमने इनकी तरफ नेक कामों की, खुद भी नेक करें काम और अपने अपने आगे लोगों को भी, उम्मतों को भी नेकी का हुक्म दे। अंबिया का काम सिर्फ ये नहीं होता कि बस एक वो जो मेल मैन होता है उसकी तरह डाकिये की तरह पैगाम पहुंचा के और जाके खुद बैठ जाएं कहीं, नहीं, वो सबसे पहले खुद अमल करके दिखाते हैं। वह इकाम अस्सलाह, और हमने उनको वही की थी किस चीज की, और एक तो नेक कामों की और किस चीज की, सलात को कायम करने की। इसका मतलब तमाम अंबिया की तरफ ये वही आई है कि नमाज कायम करें, तो नमाज कोई मामूली काम नहीं है, हल्का ना इसको समझे, नबवी काम है। और उनकी उम्मतों को भी ये हुक्म दिया, इसका मतलब हर उम्मत के लिए ये मैंडेटरी था, चाहे उनकी नमाजों के अंदर तरीके फर्क होंगे लेकिन नमाज सब में थी, ये बेसिक चीज है। और ईता जकात, और जकात अदा करने का, कि वो जकात अदा करें। तो इससे हमें पता चलता है कि बेसिक बातें हर एक शरीयत में, तौहीद, ये नमाज, ये जकात, ये रोजा, ये सब सेम थी। और यहाँ पे हमें दीन के जो, जब ये आप बेसिक अहकामात करें ना, बाज आज लोगों ने ये किया है कि वो ये सोचते हैं कि नमाज पढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या ये जकात देना, या ये रोजे, ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। और चीजों को समझते हैं, सोशल वर्क करना, ये करना, ये बड़ी चीजें हैं। नमाज, ये नमाजी तो हमने बड़े देखे हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो बेईमानियां करते हैं, वो बड़े नमाजी थे, फलाने इतने फ्रॉड थे, बड़े बड़े नमाजी हमने देखे हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। नमाज पढ़ने से क्या, अल्लाह को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को ये नहीं, इस तरह की बातें करी। हालांकि नमाज इस कदर अहम चीज है कि देखें, हर शरीयत के अंदर जो चीज हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, खुद अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितनी अहम बात होगी। और एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो सिलसिला तो सहीहा से है, सही हदीस है, शेख अल्बानी ने इसको सही बताया। इस हदीस में आपको खुद पता चल जाएगा कि नमाज की अहमियत क्या है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में एक शख्स के को मारने का, कोड़े मारने का हुक्म हुआ, एक शख्स के बारे में फैसला होगा कि उसको कोड़े मारे जाएं, कितने, 100 कोड़े लगाए जाएं। तो वो शख्स बड़ी मिन्नत समाजत करेगा, दुहाइयां देगा अल्लाह के सामने, और कहेगा, या अल्लाह मेरी सजा माफ कर दी जाए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो आखिरकार अल्लाह ताला फरमाएगा, इसे 100 कोड़ों की बजाय एक कोड़ा लगा दिया जाए। जब उसको एक कोड़ा लगाया जाएगा, अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो इतना सख्त होगा कि उसकी वजह से उसकी पूरी कब्र आग से भर जाएगी, और वो बंदा अपने होश खो देगा, जैसे इंसान बेहोश हो जाता है ना, इस तरह होश खो देगा। लेकिन आपको पता है ना कि ये जो सारी सजाएं बरजख में भी हैं, वो इंसान बेहोश हो जाता है या इंसान कुछ उसके हालत खराब हो जाती है, फिर उसकी हालत ठीक की जाती है, फिर उसको सजा दी जाती है, इस तरह से, तो फिर उसको होश में लाया जाएगा। वो फरिश्तों से पूछेगा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, यानी ऐसा क्यों किया गया, क्या मेरा जुर्म है। तो उससे कहा जाएगा, तुम्हारा जुर्म ये था, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तुम्हारा जुर्म ये था, कान खोल के सुने, कि तुमने एक नमाज बगैर वुजू के पढ़ी थी, यानी पढ़ी थी मगर वुजू नहीं था तुम्हारा, या तुम एक शख्स के पास से गुजरे थे जिस पे जुल्म हो रहा था, मगर तुमने उसकी मदद नहीं की थी। तो इससे पता चलता है कि पढ़ ली, ये उसकी बात हो रही है जिसने पढ़ ली मगर वुजू नहीं था। तो सोचो जिसने पढ़ी ना हो उसका क्या हाल होगा। और दूसरी इसमें बात क्या कही गई, या फिर तुम किसी के पास से गुजरे थे जिससे ऊपर जुल्म हो रहा था लेकिन तुमने उसकी मदद ही नहीं की। हमारे खानदानों में कई हम लोगों को जानते हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है मगर हम खामोश रहते रहे, हमें क्या, हम क्यों लोगों में पड़े, हमें क्या जरूरत है, करते रहे जो मर्जी करना है। किसी का शौहर उसको मार रहा है, पीट रहा है, किसी के घर के अंदर और कोई जुल्म हो रहे हैं लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती। हम कहते हैं हम बस छोड़ो, हमने नहीं बीच में पड़ना। तो जुल्म हो रहा था, तुमने उसकी मदद नहीं की, इसके ऊपर ये सजा मिलेगी। तो अल्लाह ताला के जो अहकामात है ना, इनको हल्का ना समझे, हम इनको मामूली ना समझे। और हदीस में इस्लाम और कुफर के दरमियान फर्क की नमाज का है, जो नमाज नहीं पढ़ता तो वो तो मुशरिक है, उसको मुशरिक करार दे दिया गया। कुछ लोग दो पढ़ते हैं, कुछ तीन पढ़ते हैं, कहते हैं बस इतनी ठीक है। असल में क्या होता है, हमसे फजर पे नहीं उठा जाता, फजर पे उठना बड़ा ही मुश्किल है। या फिर अब हमारे वो दिन आ गए हैं गर्मियों के, तो बड़ी लेट होती है इशा, हमें तो बड़ी नींद आती है, हमसे तो नहीं पढ़ी जाती। तो वो नमाज नहीं पढ़ रहे, जो दो तीन पढ़ रहे हैं ना वो भी नहीं पढ़ रहे, इसलिए कि वो भी वो अपने दिल की पूजा कर रहे हैं, अपने दिल जो उनका दिल कहता है वो कर रहे हैं वो। अब क्योंकि नमाज तो वो है, इन सलात कानत अल मोमिनीना किताब मौकूता, जो वक्त के साथ है, वक्त के साथ पढ़ी जाए, के ऐसे नहीं कर सकते पांचों नमाजें इकट्ठी करके मैंने रात को पढ़ ली, तीन इकट्ठी करके मैंने इस टाइम पर पढ़ ली, मेरी अपनी मर्जी है मैं जब पढ़ूं और जब ना पढ़ूं, जिस नमाज को चाहूं जिसको छोड़ दूं, ऐसे नहीं हो सकता। तो अपने नफ्स की इबादत है ना, क्योंकि आप आपकी अपनी मर्जियां हैं, आपकी जब मर्जी हो तो आप पढ़ेंगे, मर्जी ना हो तो नहीं पढ़ेंगे, तो इबादत किसकी कर रहे हो फिर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वकानू लना आबिदीन, और थे वो हमारे लिए इबादत गुजार, ये वो बंदे थे सारे के सारे हमारी हमेशा इबादत कर। कानू में ना इस्तमरार है ये, यानी कंटिन्यूटी, मुसलसल हमारी इबादत करने वाले थे। ऐसे नहीं होता था हमारी तरह एक दिन जज्बात में आके आज दर सुन लिया तो आज बस मैंने ये कर देना वो कर देना, अगले दिन पता ही नहीं कि कुछ सुना भी था कि नहीं। नहीं, वो ऐसे नहीं थे, वो हमेशा हमारे फर्मा बरदार थे, हमेशा हमारे गुलाम थे, हमेशा हमारी इबादत करने वाले थे। तो इनके फॉलोअर्स को फिर क्या चाहिए, वो भी इस तरह के बने। वलूतना तैना हुक्म व इल्मा, और लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने हिकमत भी दी, विजडम दी थी अल्लाह ताला ने। एक होता है इल्म और एक होता है उस इल्म को अप्लाई कैसे करना है, किन हालात में किस तरह अप्लाई किया जाएगा, वो समझ बूझ। यानी इससे हमें पता चलता है जो अंबिया होते थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते थे, ऐसे ही नहीं थे कि कोई भी पकड़ के अल्लाह ने नबी बना दिया चाहे वो इस काबिल था या नहीं। नहीं, वो अल्लाह ताला फिर उनको यानी उस तरह से उनके अंदर क्वालिटीज भी होती थी। तो वो हिकमत वाले, उनमें हिकमत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई और इल्म भी उनको अता फरमाया, और यहाँ पे मुराद खास तौर पे इल्म नबुवत है। वनजैनाहु मिनल क़रियति अल्लती कानत तअमलुल खबाइस, और उनको निजात दी उस बस्ती से जो अमल करती थी खबीस। और उनका अमल क्या था, शिर्क तो था ही इन सारी बस्तियों में जिनके ऊपर अजाब आया, इसके अलावा खबाइस जो है वो जमा है, तो इसका मतलब है कि यानी एक से ज्यादा अमल थे उनके। तो इस बारे में आता है कि वो रास्तों में बैठ जाते थे, लोगों को लूट मार करते थे, और आपको पता है जो उनका अमल था होमोसेक्सुअलिटी का। दूसरी इसकी वजह खबाइस की जमा होने की ये भी बताई जाती है कि जो उनका होमोसेक्सुअलिटी का अमल था वो इतना गंदा अमल है कि उसके लिए जमा का सीगा लाया गया, यानी वो एक नहीं है, वो इतना खबीस है कि खबाइस लफ्ज उसके लिए लाया गया, इतना बुरा है। तो ये दोनों वजह हैं यहाँ पे जमा का सीगा आने की, उसकी सिवेरिटी के लिए उसको जमा का लाया गया। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि खबीस अमल करते थे वो, और इस्लाम ने इस अमल को इंतहाई बुरा, कबीह गंदा, पलीत और यानी एक हराम अमल है जो इसको बताया। लेकिन इसके बावजूद आज इसके ऊपर बहुत बातें होती हैं कि जी नहीं जी, लोग पैदाइशी तौर पे ऐसे होते हैं, वो खुद थोड़ी इस तरह बनते हैं, वो तो ऐसे ही होते हैं, और ये कोई सही रीजन नहीं है। वजह क्या है? अल्लाह ताला याद रखें किसी ऐसी बात पे नहीं पकड़ता जो इंसान कुदरती तौर पे बेचारा मजबूर हो और वो करने पे मजबूर हो। अल्लाह युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह वही बोझ डालता है जो इंसान उठा सकता है। ऐसे नहीं कि वो है ही ऐसे और अल्लाह ताला ने उनको ऐसे कह दिया, नहीं ये नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये पहली कौम थी जिसने ये अमल शुरू किया, इसका मतलब इससे पहले ये दुनिया में अमल नहीं था, तो वो पहले लोग नहीं कभी इस तरह बॉर्न होते थे। फिर इसी तरह हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस बात को देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम खुद तो नहीं ऐसा करते, मगर क्यों अल्लाह ने ये हुक्म दिया हमें इन बिचारों के लिए और ऐसे। और ठीक है, हम नहीं कभी करते, हम ऐसे हैं भी नहीं, लेकिन वो इस चीज को बुरा समझते हैं कि अल्लाह ने क्यों ये हुक्म दिया, और फिर खुद को मुसलमान भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ईमान किस चीज का नाम है? जब आप अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आ गए तो उसके बाद आपका फर्ज नहीं है समेना वाताना का। अगर तो आपको लॉजिक लगे, बात में लॉजिक नजर आए तो तभी आपने मानना है, तो आपने तो फिर अपनी अकल को मान लिया, फिर अल्लाह ताला को तो नहीं मानना। इसके लिए जरूरी है कि आज हम लोगों को अल्लाह की मार्फत दें, अल्लाह की पहचान दें, उससे ताल्लुक जब मजबूत होगा ना, तब ये सवाल नहीं उठेंगे कि क्यों कहा ये है, हमें तो ये बात सही नहीं लगती, और क्यों इस्लाम ने इस चीज से मना किया है, क्यों ऐसे किया है। सच्चा ईमान ये है कि इंसान कहे अल्लाह ने कह दिया, मैंने मान लिया, समय ना, और उसके बाद आगे बहुत बातें नहीं कि मैंने सुन लिया और अभी पूछूं और अभी देखूं और अभी सोचूं और अभी मुझे क्या समझ आती है, नहीं, वह अताना बस। जब ईमान मजबूत हो जाएगा तो ये बातें माननी मुश्किल नहीं होंगी, फिर कोई लॉजिक नहीं मांगता, फिर बातें समझ आ जाती हैं, फिर इंसान कहता है कि बस अल्लाह का फैसला है, तो उसको पता है कि क्या चीज सही है हमारे लिए और क्या चीज गलत है, और मैंने मान लिया। और अगर आपने यही कहना है कि हमें नहीं समझ आती और क्यों ऐसा हुआ और क्यों इस्लाम ने इससे रोका, क्यों रोका, तो फिर इसका मतलब जब तक मेरी समझ में नहीं आ बात आएगी, मैं इसको नहीं मानूंगी, तो आपका ईमान नहीं है फिर अल्लाह पे, फिर आपका ईमान अल्लाह पे नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये जो लोग भी ऐसा करते हैं, वो उनको पता नहीं कि वो क्या क्या रहे हैं, डाउट अल्लाह पे करना। अल्लाह ताला ने तो फरमाया इन्नहुम कानू कौम सऊ इन फासिकीन, बेशक वो तो लोग थे इतने बुरे और फिस्क वाले, यानी बहुत नाफरमानी करने वाले थे। वह अदखलनाहु फी रहमतीना, और हमने दाखिल किया अपनी रहमत में किसको, हु उसको यानी लूत अलैहि सलाम को। रहमत क्या थी अल्लाह की, कि जितनी देर रहमत यानी जितनी देर लूत अलैहि सलाम उनके अंदर रहते रहे, अल्लाह ताला ने उनको साबित कदमी दी और उनके खिलाफ एक हुज्जत दी, और जितनी देर लूत अलैहि सलाम उनसे निकल के यानी इस बस्ती में से निकले हैं, तो ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने उनको निजात दे दी इस कौम से भी और अजाब से भी, और आखरत में भी अल्लाह ने अपनी रहमत में दाखिल कर दिया कि आखरत में जन्नत अता फरमाई। तो यानी हर तरह से रहमत में अल्लाह ताला ने दाखिल फरमा दिया। और ये यहाँ पे हमें पता चलता है, एक लूत अलैहि सलाम ही ऐसे थे जो कि अपने माशरे से उलट चल रहे थे। इब्राहिम अलैहि सलाम को भी देखें, अपने माशरे से उलट चल रहे थे। हम कहते हैं जिधर को हो, जिधर सारे चल रहे हैं उधर को ही हम चले, चलो तुम उधर को हवा हो, जिधर की जिधर का हवा का रुख है, देखा देखी जिधर सारा माशरा चल रहा है, वो अब चाहे नंग धड़ंग करना शुरू हो जाए, फहाशी करना शुरू हो जाए, बेहयाई के और कोई काम करना शुरू हो जाए, कुछ भी कर लेना, जिधर को हमारे लोग जा रहे होते हैं ना, माशरा जा रहा होता है, हम बस ब्लाइंडली उस तरफ चल पड़ते हैं। हम नहीं ये सोचते कि अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके रसूल की पसंद नापसंद क्या है, क्या करना चाहिए और क्या इस वक्त मुझे नहीं करना चाहिए, बस भेड़ चाल है, जैसे एक तरफ भेड़ें चल पड़े सारी उधर चल पड़ती, ऑपोजिट नहीं कोई चलती, यही हमारा हाल है। लेकिन हम देखते हैं दोनों पैगंबर अपने माशरों में बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। इतने गंदे माशरे में रहते हुए भी लूत अलैहिस्सलाम माहौल से बिल्कुल अलग है, डटे हुए हैं अपने रास्ते पे। ये नहीं कहते कि पता नहीं ये ठीक ही कहते होंगे, हो सकता है इनकी नेचुरली, उन्होंने तो नहीं ये सोचा, हो सकता है ये बेचारे क्या करें, नेचुरली ये ऐसे बॉर्न ही ऐसे हैं तो क्या करेंगे बेचारे, ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा। वो अपनी बात के ऊपर डटे रहे, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बात पे डटे रहे कि जो अल्लाह की बात है बस उसी पे कायम है, क्योंकि अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, मेरी और आपकी अकल गलत हो सकती है। हमें फिर देखना है कि हमें अपने माशरों में कैसे रहना है, अल्लाह रसूल की मान के या जिधर सब चल रहे हैं उधर चल के। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत में इसीलिए उनको दाखिल किया था क्योंकि वो माशरे के रंग में नहीं रंग गए थे, और इन्ना हू मिनस सालिहीन, और बेशक वो नेकोकार लोगों में से थे। और आपने देख लिया फिर अंजाम किसका अच्छा हुआ, किसको अल्लाह ने बचाया और क्यों बचाया, अपनी रहमत में दाखिल किया क्यों किया, और कौन था जो के बच गया किस वजह से, इन्नहु मिनस सालिहीन। इसका मतलब है कि जो साले होते हैं अल्लाह उनको बचा लेता है, उनको अपनी रहमत में दाखिल करता है, और किन को अल्लाह ने अजाब में मुब्तला किया, जो फासिक थे जो नाफरमान थे। ये अल्लाह का कायदा है, ये अल्लाह का कानून है, ये उसकी सुन्नत है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे उस वक्त हो चाहे आज हो। जो अल्लाह के नाफरमान होंगे उनके लिए एक वक्त जरूर आ जाता है पकड़ का, और जो बचना चाहते हैं अजाबों से उनको फिर साले होना पड़ेगा वरना बच नहीं सकते। आज भी मुसलमान माशरों के अंदर एक अजाब ही है अल्लाह का जो आया हुआ, और फिर हम देखें कि अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, सारी कौमों के किस्सों में देखें अल्लाह की सुन्नत क्या है, अल्लाह किसको बचाता है, अल्लाह की सुन्नत क्या है, अल्लाह किसको अपनी रहमत में दाखिल करता है, अल्लाह की सुन्नत क्या है, अल्लाह ताला किसको सजाएं आ भी रही हो तो किन को महफूज रखता है। खुद सोच लें, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो हमने किस रास्ते की तरफ चलना है, फिर किन लोगों में से होना है, हमने किस साइड पे होना है, हम उस साइड पे खड़े हैं कि इस साइड पे खड़े हैं, ये देखें। हम उस साइड पे खड़े हैं जिस साइड पे अल्लाह ताला अपनी रहमतों में दाखिल करता है, जिस साइड में सालेहीन का जो रास्ता है, या वो दूसरी साइड में खड़े हैं जहां पे सब चल रहे हैं, मेजॉरिटी तो वहां पे है लेकिन अल्लाह का साथ नहीं है उनके पास। वनूहन इतना अदा मिन कबलु, और नूह अलैहिस्सलाम को इससे पहले, क्या इससे पहले, यानी नू इजनादा मिन कबल, नू अलैहिस्सलाम जब उसने पुकारा इससे पहले, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और इन पैगम्बरों से सबसे पहले, और मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, इन सारे पैगम्बरों से पहले लूत सॉरी नू अलैहिस्सलाम आए थे जिन्होंने अल्लाह को पुकारा था। तो क्या पुकारा था उन्होंने, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर, अल्लाह मैं तो मगलूब हो गया, अल्लाह अब बस ये इन लोगों मैं इनके सामने अल्लाह बेबस हो गया हूं, बस अब तू मेरी तरफ से बदला ले। उनकी पूरी दुआ आती है ना सूरह कमर में भी है, ये 950 साल की तबलीग के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, और फिर आप देखते हैं सूरह नूह में भी इनका जिक्र आता है उनकी दुआ का। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर ली, फस्तजबना लहू, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली, फनजैनाहू व अहलहू मिनल कर्ब अज़ीम, हमने उसको निजात दी और उसके घर वालों को कर्ब अज़ीम से। वो कर्ब क्या था, वो कर्ब, वो एक तो ये कर्ब था जो उनकी कौम उनको टॉर्चर करती थी, अजियत देती थी, दूसरा कर्ब क्या था, सोचें 950 साल की तबलीग, इतनी खैरख्वाही, इतनी मेहनत, और सिर्फ 80 लोग ईमान लेकर आए, ये कर्ब ही तो था, अल्लाह ने निजात दे दी, उस कौम से ही निकाल लिया। और फिर अजाब से निजात देना, वो तो सबसे बड़े कर्ब अजीम से निजात देना, और इनके अहल को भी, अहल कौन थे, अहल में और इनके फॉलोअर्स, इनके घर वाले, वो अहल है। मगर हमें सूरह तहरीम से पता चलता है कि इनकी बीवी ईमान नहीं लेकर आई थी, और सूरह हूद में हम पढ़ चुके हैं पहले इनके बेटे के साथ इनका जो पूरा किस्सा था वो हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि इनका बेटा भी ईमान नहीं लेकर आया था, एक बेटा, तो वो उसमें शामिल नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये आपके अहल हैं ही नहीं। तो बात समझ आ गई कि अहल में कौन थे, वह नसर ना हो, और नुसरत दी हमने, मदद की हमने उसकी, मिनल कौम लदीना कज़्ज़बु भी आयातिना, उस कौम से जो हमारी आयात को झुठलाती थी, इन्नहुम कौम, वो कौम क्या थी नूह अलैहि सलाम की, जो अल्लाह की आयात को झुठलाया करती थी, इन्नहुम कानू कौम सौइन, वो भी बुरे लोग थे, फअग़रक़नाहुम, तो गर्क कर दिया हमने उनको अजमाइन, सब के सब को, एक को भी नहीं छोड़ा। यानी आप इमेजिन करें कि जिस वक्त जमीन से भी चश्मे फूट रहे थे और आसमान से भी पानी बरस रहा था, और कोई जगह नहीं थी जो जाके वो पनाह ले लें जाके, कोई जगह नहीं थी। भागो फिर कहां भागते हो, अल्लाह की पकड़ से फिर कोई बच नहीं सकता जब उसकी पकड़ आती है। ये तो अल्लाह ताला जब नहीं पकड़ रहा होता तो लोग समझते हैं पता नहीं अल्लाह ने पकड़ना ही नहीं है, हालांकि उसका तहम्मुल है, ये उसका हिल्म है कि वो नहीं पकड़ता बावजूद इसके कि वो देख रहा होता। तो फिर अल्लाह को ना ललकारा जाए अपनी बुराइयों के साथ। और फिर उसके बाद दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात आती है। ये वो पैगंबर हैं, दो पैगंबर ऐसे हैं जो नबी भी हुए और बादशाह भी हुए। इससे पहले नबी अलग होते थे और बादशाह अलग होते थे। फिर अल्लाह ताला ने इन ये फर्स्ट टाइम थी कि नबी और बादशाह एक ही वक्त में दोनों रोल्स इनके पास थे। और इस दाऊद अलैहिस्सलाम को कैसे बादशाहत मिली थी, ये आपने दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आप दूसरे पारे का एंड देख लें, जहां पे तालूत और जालूत का किस्सा भी आता है। बनी इसराइल ने अपने लिए एक बादशाह मांगा था अपने नबी से कि हमें बादशाह चाहिए, तो फिर तालूत उनका बादशाह बना और उसके बाद जालूत के साथ जंग हुई, तो फिर जालूत को दाऊद अलैहिस्सलाम ने मारा और दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। तो दाऊद और सुलेमान वो याद करो इज जब क्या हो रहा था, यहकुमानी वो दोनों फैसला कर रहे थे किस बारे में, फिल हर्स खेती के मामले में क्या हुआ था। इज नफशत फीही गनमुल कौम, जब चर रही रात को चर लिया था इसमें, किसमें, खेती में, गनमुल कौम कौम की बकरियों ने, जब कौम की बकरियों ने चर लिया था इस खेती को तो उस बारे में फैसला कर रहे थे। अब ये किस्सा क्या है, कहा जाता है कि दो आदमी आए, एक ने कहा कि ये मेरी खेती थी और इसकी बकरियों ने आके मेरी खेती को चट कर दिया, सफाया कर दिया और मेरी खेती सारी तबाह हो गई, अब हमारा फैसला करें, इंसाफ करें हमारे साथ। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि जो बकरियां थी वो खेती वाली को दे दी जाएं, इसलिए कि उसका नुकसान पूरा हो, क्योंकि ये हकूकुल इबाद का मामला है और ये बड़ा नाजुक मामला होता है, बकरी वाले को एहतियात करनी चाहिए थी कि उसकी बकरी किसी की खेती में जाके उसका सारा नुकसान ना कर दे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और बात, यानी इस बारे में एक और फैसला बताऊं जो इसी सिलसिले में हो, इसके सिवा भी एक फैसले की सूरत है तो वो मैं बताऊं। तो उन्होंने इजाजत दी दाऊद अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि बकरियां जो हैं वो ये खेती वाले के हवाले कर दी जाएं, वो उनसे फायदा उठाता रहे। कैसे फायदा उठाएगा, कि दूध वगैरह उनका, या अगर कोई भेड़े हैं तो उनकी ऊन, या वैसे उनसे जो भी फायदा उठाना उठाता रहे। और बाग वाले को बकरी दे दी, बाग वाले को तो बकरियां दे दी और बकरी वाले को बाग दे दिया जाए कि वो वहां पे अब बाग के अंदर काम करे, और उसके अंदर जो अंगूर की बेलें वहां पे लगी हुई थी जो सारी खराब कर दी थी वो उनको दोबारा ठीक ठाक करे, उसको फिक्स करे सारा, फिर उसमें मेहनत करे जिस बाग था या खेती थी। और जब वो उसी हालत में वापस आ जाए जिस पे थी, जिस पे इन बकरियों ने खराब किया, तो बाग वाले को बाग वापस कर दें और बकरियों वाले को बकरियां वापस कर दें। तो ये बड़ा एक जबरदस्त फैसला था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। तो इसी बारे में यहाँ पे आ रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब फैसला दोनों ने किया और उनमें ये खेती के बारे में और जो इसको बकरियों ने खा लिया था, वकुन्ना ली हुक्मी हिम शाहिदीन, और हम उनके फैसले को देखने वाले थे, हम वॉच कर रहे थे उनको जब ये वो फैसला कर रहे थे। अब इसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ा ये सबक है कि देखें, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं और बाप भी हैं, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने अना का मसला नहीं बनाया कि मैंने तो अब फैसला कर लिया और अब मैं अपने फैसले के ऊपर कैसे जाऊं, बादशाह ने फैसला कर लिया और मैं क्यों। और दूसरे हमें पता चलता है कि उनके अंदर कितनी आजी थी कि फैसला जो अब, यानी बेटा कह रहा है कि मैं आपको एक और फैसला बताऊं, उसकी एक और भी सूरत हो सकती है, तो फौरन बच्चे को इजाजत दी, ये नहीं कि चुप करके बैठो तुम क्या बड़ों की बातों में बोल रहे हो जैसे हम करते हैं। तीसरी बात ये कि सुभान अल्लाह, जब बेटे ने फैसला बताया तो उसकी बात को मान लिया, ये नहीं कि जब कभी बच्चा हमारे सामने कोई हक की बात करे कि अम्मी ये तो आप किसी की चुगली कर रही हैं, गइबत कर रही हैं, ये तो सही बात नहीं है, अम्मी आपने ये तो झूठ बोला है, ये तो सही नहीं है, तो हम कहते हैं चुप कर जाओ तुम्हें क्या समझ है, ज्यादा नहीं बढ़ के बातें करो। नहीं, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब फैसला फरमाया तो हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम का कोई फैसला ये नहीं था कि गलत है, बल्कि उनका फैसला इंसाफ ही था, अदल तो यही था कि भाई जिसका नुकसान हुआ है उसको दे दीजिए, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला बेहतर फैसला था उनके फैसले से। गलत नहीं कह सकते दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले को, मगर उससे जब बेहतर फैसला आ गया तो अपनी राय को अपने फैसले को पीछे कर लिया और उनका फैसला कबूल कर लिया। बच्चा होते हुए अपना बेटा होते हुए, तो एक तो बादशाह के तौर पे देखें कि बादशाह होते हुए ये किया, फिर बाप होते हुए जबकि बच्चा बोल रहा हो, कितने वालदैन है जो ऐसा सोच सकते हैं कि वो बच्चे की राय को कबूल कर लें या उसके फैसले को, या वो कहे तो बात हम कह लें कि हाँ हम तो अपनी अना का भी मसला फिर बना लेते हैं कि अगर इसके सामने मैंने ये कह दिया कि मेरा तो गलत है, मेरी बात गलत और तुम्हारी ज्यादा सही है, या मेरी कम यानी कम दर्जे का मेरा फैसला और तुम्हारा ज्यादा, तो ये तो सर पे ही चढ़ जाएगा, तो इसको कम अज कम अगर मैंने ये करना भी है तो इसके सामने ना मैं कहूं। इतना ज्यादा हम अना का मसला बनाते हैं, सुभान अल्लाह वहां पे तो कोई अना ही नहीं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी ये नहीं कहते कि आपका फैसला गलत है, ये क्या आपने फैसला किया, नहीं, अदब अदब देखिए उनका भी, कि कुछ भी नहीं फरमाया कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ फैसला, मेरा फैसला ज्यादा अच्छा। फरमाते हैं ए अल्लाह के नबी, इसके सिवा भी एक फैसले की सूरत है, सुभान अल्लाह तरीका देखिए। तो हमें इससे बहुत सीखना चाहिए, हक बात चाहे कोई बच्चा कहे, चाहे कोई छोटा कहे, चाहे कोई आम आदमी कहे, चाहे कोई स्टूडेंट कहे, चाहे कोई भी, हक बात जो है वो हक ही है। कितना ही कोई आपसे छोटा हो, चाहे मकाम में, चाहे मर्तबे में, चाहे उम्र में, चाहे इल्म में, फिर भी जब अगर वो हक बात कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। और कोई भी उससे छोटा नहीं हो जाता कि अगर वो हक को तस्लीम कर ले। इसी तरह अगर किसी छोटे की बात मान ली जाए तो उसको भी ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो मैं इतनी बड़ी चीज हो गया हूं और इस दफा तो इन्होंने गलत बात की थी, आइंदा भी इनकी बातें सारी गलत होंगी, अब तो मैं ही सारी ऑल इन ऑल हूं, मुझे ही सारी अब अकलें आ गई हैं, और देखा मैंने फलां वक्त में भी इनको बताया था तो देखा इनकी बात गलत ही थी ना, उस वक्त भी मैंने इनको टोका था, तो वो भी कोई अकड़ में ना आ जाए। देखिये पैगंबराना अखलाक फिर होते क्या है, ऐसे ही तो नहीं ना फिर वो पैगंबर बने। हम दोनों में से किसी रोल में भी हों तो हमारी अकड़ ही खत्म नहीं होगी, और छोटे हैं तो तब भी हमें लगेगा कि पता नहीं हम क्या चीज बन गए हैं, आज हमारा अगर फैसला कबूल हो गया या हमारी राय मान ली गई तो अब हमेशा के लिए मैं ही बस अकले कुल बन गई। और फिर फहमना सुलेमान, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी बात हमने समझाई थी सुलेमान को। आप देखेंगे आगे भी बातें जितनी भी आ रही हैं इनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गईंगी तो आपकी अकल दंग रह जाती, फिर उसके बाद फौरन अल्लाह ताला फरमा देते, लेकिन अपनी तरफ निस्बत होती है कि ये बात हमारी तरफ से थी, ये हमने समझाई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो असल तो फिर अल्लाह ताला की शुक्र और एहसान मंदी होनी चाहिए ना, वह कुल्लना तैना हुक्म व इल्मा, और सब के सबको। अब यहाँ पे बात आ गई कि कोई अपने आप को ये ना समझे मैं बड़ा हो गया, या दाऊद अलैहिस्सलाम को तो पता नहीं समझ ही नहीं थी, नहीं, दोनों को हमने विजडम भी दी थी और इल्म भी दिया था। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की जो फजीलत है कि यानी अल्लाह ताला ने उनकी शान को, कोई ये नहीं है कि उनकी कोई शान घट गई है इससे या कुछ है, देखो फिर उनका मकाम, वसखरना मा दाऊद अलजिबाल, हमने मुसखर कर दिया यानी उसके हाथ के अंडर दे दिया, वो जिस तरह हुक्म करता था उसी तरह करते थे पहाड़, कैसे कि युसब्बिहना मा दाऊद अलजिबाल युसब्बिहना, कि ऐसे अल्लाह ने उनको अंडर दे दिया था दाऊद अलैहिस्सलाम के, कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलके तस्बीह करते थे, यानी आगे आगे दाऊद अलैहिस्सलाम और वो फॉलो करते थे पहाड़, इनको इनकी तस्बीह के साथ तस्बीह करते थे। वो तईर और तईर, अब यहाँ पे ये भी आ सकता था मा दाऊद अल जिबाला व तईरा, या मा दाऊद युसब्बिहना जिबाला व तईर, ऐसे भी आ सकता था, तस्बीह करते थे पहाड़ भी और परिंदे भी, लेकिन फरमाया पहाड़ तस्बीह करते थे और परिंदे भी करते थे। क्यों ऐसे फरमाया गया? इसलिए पहाड़ों को हाईलाइट किया गया, क्योंकि पहाड़ों की तस्बीह करना हमारे लिए बड़ी हैरत की और अचंभे की बात है। ठीक है परिंदों की भी तस्बीह की बात हमारे लिए अजीब है, लेकिन परिंदों की तस्बीह को फिर भी हम कुछ सोच सकते हैं कि परिंदों का चहचहाना या उनकी ये शायद उनकी तस्बीह, लेकिन पहाड़ों का तस्बीह करना, उस पे तुम्हारी अकल ही दंग रह जाती है, पहाड़ कैसे तस्बीह करते होंगे। तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये एक मोजजा दिया था कि उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, कोई साज बाजे नहीं थे जैसे आज वो कहते हैं उनके मजामीर थे, और ये उनका मजामीर उनकी आवाज ही थी, कोई साज बाजे गाजे नहीं करते थे, बस वो अपनी इतनी खूबसूरत आवाज से अल्लाह की हम्द के तराने पढ़ते थे कि पहाड़ भी साथ पढ़ने शुरू हो जाते थे, और सुबह तुलू आफताब के वक्त और गुरूब के होते वक्त ये तस्बीह किया करते थे, और जबूर के अंदर अल्लाह की हम्द के तराने ही है वो पढ़ा करते थे। तो ये दोनों मखलूक जो है अल्लाह की ये साथ शामिल हो जाते थे। अब बाज दफा हम सोचते हैं कोई दूसरी जगहों पे जो हमने पढ़ा है कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, चाहे वो परिंदे हैं चाहे कुछ है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि सब चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और सजदा भी करती हैं और नमाज भी पढ़ती हैं अल्लाह के लिए, है ना। सूरह नूर में भी है ना 41 आयत में कि नबी आपने देखा जमीन आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, और परिंदे भी और दूसरी जो भी मखलूकात हैं वो भी, और हर एक मखलूक ने अपनी नमाज पहचान ली है, जान ली है, और वो यानी नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उन तुम समझ नहीं सकते उनकी तस्बीह को और उनकी इस चीज को, नमाजों को और इसको, यानी हर मखलूक को अल्लाह ताला ने सिखाई भी है उनकी नमाज, उन्होंने जान ली है अपनी नमाज, तो नमाज भी पढ़ती हैं। अब जरूरी नहीं हमारी तरह पढ़ती हूँ, हम ये कहें या ये सोचें कि जैसे हम तस्बीह करते हैं वैसे तस्बीह करती हूँ, जिस तरह से भी बस अल्लाह ने उनको सिखाया, उनकी तस्बीह उनको सिखा दी। लेकिन फिर यहाँ पे जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहाड़ और तयर तस्बीह करते हैं, तो ये वो तस्बीह नहीं है जो सारी मखलूक हर वक्त कर रही है, ये कोई डिफरेंट ही बात है, क्योंकि ये मोजा है, इसको उससे नहीं कंफ्यूज करना चाहिए कि वो तो सारे ही कर रहे हैं तो फिर इतनी खास क्या बात हो गई। यही तो बात है कि ये वो तस्बीह नहीं है, ये किसी और तरह की तस्बीह है, वल्लाहु आलम कैसी थी ये तस्बीह, मगर इसलिए इनकी इनको डिस्टिंग्विश किया गया, अलग से इनको बयान किया गया, वरना तो जमीन आसमान की सारी मखलूक तस्बीह करे फिर इतनी क्या बात थी। नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ते थे तो उनके साथ तस्बीह में शामिल हो जाती थी। और बाज ने लिखा जो मौजों को झुटलाते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो एको था, वो दाऊद अलैहि सलाम पढ़ते थे तो एको होता था, सारा सारा जो माहौल था उसमें ऐसे लगता था कि सारा माहौल में गूंज एक होती थी, तो वो पहाड़ भी तस्बीह कर रहे हैं। अकल से इंसान अगर सोचे तो अगर ऐसी बात हो फिर दाऊद अलैहि सलाम का क्या कमाल है, मैं जाके पढ़ने शुरू हो जाती हूँ कहीं कुरान, यहाँ पहाड़ हूँ और वहां पे मेरी भी आवाज एको करने लगेगी, तो ये क्या मेरा भी मौजा हो गया, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल अल्लाह ताला ने ये मौजजा दिया हुआ था। फिर फरमाया वकुन्ना फाइलीन, यही बात ये बात बताती है हम जो हैं करने वाले, तुम ये सोचते हो कि ये कैसे हो गया होगा, ये कैसे हो सकता है कि पहाड़ तस्बीह कर रहे हो। बात ये है कि ये ना तो दाऊद अलैहिस्सलाम को कोई कमाल तो ना किसी और का, ना पहाड़ों की कोई ताकत, बल्कि ये अल्लाह है जो करने वाला है। क्या फिर तुम इस बात को नहीं मानोगे कि अल्लाह ये कर सकता है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। वअल्लमना हुसनात लबूसिन लकुम, और हमने सिखाया उसको, हमने ये यानी कारीगरी सिखाई इसको, किस चीज की, लबूसिन लकुम के जंगी सामान बनाने की, लिबास बनाने की, सामान नहीं लिबास बनाने की तुम्हारे लिए, लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, ताकि तुम महफूज करो अपने आप को, बचाओ अपने आप को, बचा सको अपने आप को जंग से। जंग में जो जंगी लिबास बनाना होता था ये दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले भी हुआ करता था, मगर वो बिल्कुल फ्लैट जैसे एक शीट ऑफ आयरन है इस तरह से होती थी। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के एक तो अल्लाह ताला ने हाथ में लोहे को नरम कर दिया था, दूसरे स्पेशल बताया गया अल्लमनाहु, हमने सिखाया, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा होगा या जिस तरह से भी अल्लाह ताला ने उनको सिखाया कि कैसे कड़ियां मिला मिला के, चेन्स के ये कुंडे मिला मिला के कैसे बनानी है जिससे इंसान मूव भी कर सके, और ये एक जैसे जीरा बनाने का होता है, ये अल्लाह ताला ने कारीगरी सिखाई, सुभान अल्लाह। तो ये जे दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने उनको एक ये हुनर दिया उनके हाथ में जो आज से पहले कभी भी नहीं था। तो इससे पता चलता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे, बादशाह भी थे, और वो अपने हाथ से काम भी किया करते थे, वरना बादशाहों को क्या जरूरत है कि वो जो है ना ये वजीरे बनाते फिरे। और वो इतने बड़े बादशाह थे, और वो भी ये भी आता है कि वो लोहार का काम किया करते थे, यानी अपने हाथ से कमा के खाते थे। आज ये समझा जाता है कि जो दीन का काम कर रहा हो उसको कमाई के लिए तो बिल्कुल निकलना ही नहीं चाहिए, ये तो दुनियावी काम है, दुनिया के पीछे लग गया। हालांकि आपको ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कस्बे हलाल ऐन इबादत है, यानी आप हलाल कमाई करते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, ये भी एक इबादत है। उसको बिलिटल करना, हकीर समझना, ये क्या दुनिया के पीछे पड़ गया। ओ भाई, ये काम तो नबियों ने भी किया, क्या दाऊद अलैहिस्सलाम ये लोहार का काम नहीं किया करते थे? और वो उसमें भी सोचे, जब लोहार को आप देखते हैं हाथ भी काले हो गए हैं, कपड़े काले हो जाते हैं, ये वो काम है जिसमें इतना इंसान, लेकिन उन्होंने इसको हकीर नहीं जाना, बादशाह हो के भी इसको हकीर नहीं जाना करना। तो बल्कि ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो ईमानदार ताजिर है ना, ईमानदारी से जो काम करता है, अंबिया और शुहदा के साथ उठाया जाएगा क्यामत में। तो ये इससे आप अंदाजा करें कि यानी ये जब आप ईमानदारी से रिस्क हलाल कमाने के लिए कोई एफर्ट करते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं, इसको समझे। नहीं जी, हम तो दीन का काम करते हैं, हम दीन का काम करने का मतलब ये है कि बिल्कुल ना कुछ कमाओ ना कुछ है, बस लोग ही आके अपनी ज़कातें और सदके दे जाया करें हमें, और हम तो बस, हम तो दुनिया का तो कुछ करते ही नहीं, हम तो दुनिया, ये हम ना, हमने बिल्कुल, अफसोस होता है कि समझा ही नहीं दीन को, असल में समझा ही नहीं। देखिए, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम वो मिसालें हैं जिनके पास नेमतों की भरमार थी। अब आगे देखेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी हम पढ़ने भी लगे, कितनी नेमतें थी इनके पास। नेमतों का होना बुरा नहीं है, अगर अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई नेमत किसी को देता है, हलाल तरीके से मिलती है आपको, तो ये ना समझे कि नहीं दुनिया तो काफरों के लिए, हमारे लिए क्या है, हमारे तो बस आखरत है, हम तो ये नहीं, ये तो बस लेना भी बुरा, इसको इस्तेमाल करना भी बुरा। नहीं भाई, आप देखें दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतें मिली। हाँ, ये है कि जब इंसान को ये नेमत मिलती है, ये जिन चीजें भी उसको माल है या और चीजें हैं, वो नेमत नहीं बुरी होती है। बुरी क्या चीज होती है? जो इंसान उसके बाद अपने रवैये रखता है कि इंसान अल्लाह को भूल जाता है, फिर उसके बाद इंसान गफलतों में पड़ जाता है, फिर इंसान तकब्बुर करने लगता है, फिर इंसान और दूसरों को हकीर समझना शुरू हो जाता है। तो नेमत बुरी नहीं है, और नेमत का किसी के ऊपर इनाम होना ये भी मतलब नहीं कि ये तो कोई बुरा ही होगा इसीलिए अल्लाह ने इसको यहां पे ही दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्यों मिल गई? और नेमतों का मिलना कोई दीन से दूरी भी नहीं होती, और ना नेमतों का इस्तेमाल करना कोई बुराई की बात होती है और दीन से दूरी होती है। बल्कि आप देखें, गौर करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे वो बादशाहत अता करना जो मेरे बाद किसी को भी ना मिले ऐसी बादशाहत। तो आप कहेंगे उन्होंने दुनिया मांग ली थी। तो समझने की कोशिश करें कि क्या चीज बुरी है। अल्लाह ताला से नेमत मांग लेना, इसमें भी बुराई नहीं है, ये भी कोई दीनदारी के खिलाफ नहीं है। अल्लाह नेमते देने वाला है, वो नेमते देता है, उनको जब उसने ही दी है तो उनको इस्तेमाल करने से वो क्यों रोकेगा? मगर असल चीज है नेमत पा के लिमिट्स के अंदर रहना और अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना, उसके आगे झुक जाना, जितनी नेमतें ज्यादा हो उतना ही झुकना। और कभी नेमत को ये ना समझना ये मेरा अपना कमाल है, मैंने खुद कमाई है, मेरी मेहनत है, मेरी ये है, बस वो इतने सरकश हो गए कि अब दिमाग ही आसमान पे पहुंच गया, ये नहीं। या अपनी काबिलियत समझने लगना, अब अपनी काबिलियत समझेंगे फिर ना किसी पे स्पेंड करेंगे, फिर मुट्ठी भी बंद कर लेंगे, फिर बड़ाइयां भी करेंगे, फिर शेखियां भी मारेंगे। नहीं, शुक्र, शुक्र कब होता है? इसीलिए आगे फरमाया, एक पहले ये बात बता दूं कि ये जो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, अगर इनको नेमतें मिली, नेमतों की इनके ऊपर भी बहुत भरमार थी, और इन्होंने शुक्र में भी कमी नहीं की, शुक्र की भी इंतहा कर दी इन्होंने, इंतहा कर दी, इतना शुक्र अदा किया कि शुक्र का भी हक अदा करके रख दिया। और यानी उन्होंने किसी भी चीज को अपना कमाल नहीं समझा, जब शुक्र इंसान कब करता है? जिस वक्त वो ये समझता है कि किसी ने मुझे कोई चीज दी है। अगर वो ये समझता है कि किसी ने मुझे दी नहीं, मैंने ही सारी ली है, तो फिर तो शुक्र करेगा ही नहीं। फिर किस बात का शुक्र करूं मैं? फिर तो शुक्र का सवाल ही नहीं है। तो वो शुक्र अदा करने वाले थे, और यही अल्लाह ताला को मतलूब है कि इंसान को दे के भी वो ये आजमाता है कि शुक्र करता है कि नहीं। पुरानी उम्मतों में से एक हदीस में आता है, हदीस मुबारक सही है हदीस है, कि एक आदमी था पिछली उम्मतों में तकब्बुर से चल रहा था, और अपना कपड़ा जमीन के ऊपर लटका के चल रहा था, अकड़ अकड़ के चल रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धंसा दिया, और क्यामत तक वो जमीन में धंसता ही रहेगा। ये है वो चीज जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तू तकब्बुर करता है अल्लाह के सामने। तो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नेमते का जवाब शुक्र के साथ दिया, और इतना शुक्र किया, इतना शुक्र किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी भी कदरदानी की। तो यहां पे पता चलता है कि अच्छा, फिर ये देखें कि जब इनकी बात आती है कि इनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा भी, इतना कुछ दिया, ये शुक्र अदा करने वाले थे। फहल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम भी शुक्र गुजार बनोगे? तुम भी शुक्र करोगे? फिर तुम्हें भी अल्लाह ने नेमते दी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान करके, और वो अल्लाह के बड़े शुक्र करने वाले बंदे थे, तो क्या तुम्हें भी तो नेमते दी नहीं है ना? चलो उतनी नहीं मिली जितनी दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली है, लेकिन शुक्र में तुम कितने हो? या हर वक्त क्या तुम गिले शिकवे करते रहते हो? वो हाथ से काम करके भी शुक्र अदा करते थे। तुम्हें नौकरियां मिल जाती हैं, छत मिली हुई है, खाने को मिला हुआ है घर के अंदर, फिर भी शिकवे गिले। सेहत मिली हुई है, औलाद सही सलामत है, फिर भी शिकवे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम, वली सुलेमान रेहा आसिफतन तजरीबी अमरी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने मुसखर कर दी थी क्या? हवा। हवा इतनी तंदुरुस्त तेज हवा इनके ऑर्डर के, उनके ऑर्डर पे चलती थी, इनके हुक्म की ताबे थी। जिधर ऑर्डर करते थे हवा उस तरफ चलती थी। तजरीबी अमरी ही, उसके हुक्म से चला करती थी। और कौन सी हवा? वो जो बड़ी जोर की हवा थी, इसीलिए तो ले जाती थी ना इनको, इलल अर्दिल्लती बारकना फिया, उनको ले जाती थी उस जमीन की तरफ जिसकी में अल्लाह ताला ने बरकत दी है, हमने बरकत दी इसमें। ये फिर वही अर्जे मुकद्दस की बात है, चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम यहीं रहते थे तो ज्यादातर जाना आना यहाँ पे होता था, तो उनके लिए कोई एरोप्लेन नहीं बल्कि अल्लाह ने हवा को ही मुसख़्क़र कर दिया। तुम तो आज सवारियां बनाते तो सोचते हम टेक्नोलॉजी में कितने हो गए, क्या हो गए, उनके तो अंडर हवा ही थी कि अल्लाह ने हवा को ऐसा कर दिया था कि पाबंद है उनके हुक्म की, जिधर कहते थे उधर उड़ा के ले जाती थी। वल्लाहु आलम, कोई कालीन था जिसपे बैठते थे, या कोई सवारी की, या क्या चीज थी जिसके ऊपर बैठते होंगे तो ले जाती है, लेकिन ये पता चलता है। यहाँ पे आप सोचते होंगे आसिफा, बड़ी जोर की ऐसी इतनी तेज हवा, तो पता नहीं कैसे फिर बैठते होंगे, क्या उनका हाल होता होगा फिर ऐसी हवा से अगर उड़ा के लेके जाती है। तो सूरह सौद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नरम हवा थी, नरम चलने वाली हवा। तो अब हम सोचते हैं वहां पे नरम हवा कहा गया, यहाँ पे कहा गया बड़ी तेज चलने वाली, तो दोनों में क्या बात, फिर कैसे आप करेंगे इन दोनों को समझेंगे? तो तेज तो थी स्पीड में, जैसे यहां पे फरमाया आसिफा, लेकिन इतनी नरम थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कि ना कोई नुकसान देती थी, उनके पूरे कंट्रोल में होती थी, ना चीजों को नुकसान देती थी। हरिकेन वाली हवा चले तो चीजें ही उड़ा के ले जाए, नहीं, किसी चीज को भी नहीं नुकसान, उन सब के लिए बड़ी जेंटल थी, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाती थी, ऐसे ही ले जाती थी। और जब आप इससे मेसमराइज होने लगते हैं, मरूब होने लगते हैं, सोचते हैं हाय ऐसा होता था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आ गई, वह कुन्ना भी कुल्ली शेन आलिमीन, और हम थे हर चीज को जानने वाले। ये आपको याद दिहानी कराई गई कि ये जो जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अल्लाह के इल्म से हो रहा है, उसका इल्म अल्लाह ताला रखता है। यानी कोई टेक्नोलॉजी में बढ़ जाए, कोई किसी चीज में बढ़ जाए, हवाएं चल पड़े किसी को उठा के ले जाए, या तुम स्पेस में अपने रॉकेट भेज दो, या जो भी सारी जो तरक्की है ना, वो सब अल्लाह ताला की इल्म ही है, उसकी वजह से हो रही है। सब का इल्म अल्लाह के पास है। हैरान क्यों होते कि ये कैसे हो गया? ये भी कमाल कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम का नहीं था, ये रब का है जो हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह अकबर। और अच्छा, एक बात पीछे की रह गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो आयत नंबर 79 में आप नोट कर लें कि ये जो इल्म की भी बात की गई ना, वहां पे भी इल्म की बात आई थी, इल्म की बात जब अल्लाह ताला ने फरमाई तो फरमाया वकुल्लन आतई ना ना, हमने उनको दिया विजडम भी और इल्म भी। अल्लाह ताला ने फरमाया ना उसमें सूरह बकर में, युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिकमत अता फरमाए, विजडम भी अल्लाह ताला अता फरमाता है तो मिलती है जिसको अल्लाह चाहे अता फरमाए, और यहाँ पे फरमाए इल्म भी हम जिसको चाहे दें, हम देते हैं इल्म, यानी अल्लाह ताला ने इल्म की भी निस्बत अपनी तरफ की है। यहां से यह पता चलता है कि इल्म अल्लाह की देन है, अल्लाह के देने से मिलता है, जैसे हम कहते हैं ना रिज्क है वो अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना दे, इसी तरह इल्म भी अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह का करम होता है किसी के ऊपर तो मिलता है, ये सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं मिलता, जैसे हम कहें रिस्क कमाने के लिए हम गए थे तो हमें मिला, नहीं, इसी तरह इल्म भी सिर्फ अपनी मेहनत से मिला। बेशक आप मेहनत करें, मगर कोई अगर ये सोचे कि मैंने जी मेहनत की और इल्म हासिल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आदम को भी सारे नाम अल्लाह ने याद करवाए थे, सिखाए थे अल्लाह ताला ने, तो तब आदम अलैहिस्सलाम को आए थे, खुद नहीं आ गए थे। तो इल्म अल्लाह की तरफ से है, ये जो जहन का खुलना है, जो सीने का खुलना है इल्म के लिए, ये अल्लाह की तरफ से होता है, तब इल्म अंदर आता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ठीक है मेहनत तो करें, लेकिन इसके लिए दुआ किया करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी शराहली सदरी, ये अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह तू ही जिसको चाहे इल्म अता फरमाए तो तू मुझे इल्म अता फरमा, तू इल्म में मुझे ज्यादा दे। और आयत दाइन में आता है ना कि वत्तकुल्ला वयुअल्लिमुकुमुल्ला, जो अल्लाह से डरता है ना अल्लाह उसको सिखाता है, तकवा जब होगा अल्लाह सिखाएगा फिर। तो इल्म की भी बात हमें पता चली कि अल्लाह से मांगेंगे वो देगा तब इल्म मिलेगा। और फिर आगे देखते हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया, वह मिन शयातीनी, और शैतानों में से उनके ताबे कर दिए, वो भी सखर ना जो था ना मुसखर कर दिया हमने उनको, उनके लिए किसको, शयातीन को, शैतान भी उनके, शैतान कौन होते हैं, इंसानों में से भी शैतान होते हैं और जिन्नों में से भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे जिन शयातीन का जिक्र है, वो आगे की बातों से भी आपको पता चलेगा। और भी जगह, एक जगह कुरान करीम में आता है कि ये जो शरीर जिन होते हैं, जिन्नों में देखें जैसे इंसानों में होते हैं, मुसलमान भी होते हैं काफिर भी होते हैं, जिन्नों में भी मुसलमान और काफिर होते हैं, इंसानों में जैसे नेक और बद होते हैं जिन्नों में भी नेक और बद होते हैं, मगर जो इनके नेक होते हैं उनको शैतान नहीं कहते, जो इनके बद होते हैं, जो इनके शरीर होते हैं उनको, शर वाले जिन्नों को शयातीन कहा जाता है। तो उनको इनके अंडर कर दिया, इनके लिए मुसखर कर दिया, मैं यगूसून लहू, जो गोता लगाते थे इसके लिए, डाइव कर करके चीजें लेकर आते थे समुद्र में, यानी इनके हुक्म के ताबे थे, वही अमलूना अमलन दूना जालिक, और इसके अलावा भी अमल किया करते थे, इनके लिए बड़े काम काज करते थे, बिल्डिंगे बनाते थे, घर बनाते थे, खाने पकाते थे, देगे पकाते थे, ये सब काम करते थे, हौज बड़े बड़े बनाते थे ये जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर, और जो भी हुक्म देते थे वो उनके हुक्म को मानते थे। अब जब हम फिर सोचते हैं अल्लाह जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में कैसे रहते थे, कैसे उनके काबू में थे, जिन उनके काबू में थे, और वो भी ऐसे सरकश जिन जिनको शयातीन कहा जाता है, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमा दिया वकुन्ना लहुम हाफिजीन। जी जनाब, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं था, याद रखो हम थे उनके लिए हिफाजत करने वाले, हम थे निगहबानी करने वाले, ताकत अल्लाह की है जिसकी वजह से वो जिन मुसखर हुए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दे दिए हुए थे, उनके हुक्म के, उनके ऑर्डर के पाबंद थे, वरना इंसान जिन्नों के सामने क्या चीज है, जिन्न तो इंसानों को वैसे ही फाड़ खाए तो वो तो इतने ताकतवर होते। तो फरमाया इसलिए कि हिफाजत करने वाले हम जो थे, इसलिए जब कोई जिन, अगर एक और जगह कुरान पाक में आता है ना कि वो कोई जिन अगर सरकशी करता था सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को नहीं मानता तो अल्लाह की तरफ से वो जला दिया जाता था, तो फिर अल्लाह ताला की सारी तारीफ और उसी की सारी ताकत और उसी की कुव्वत है ना। और जब जब देखें कोई भी बात आती है तो उसके बाद तारीफ अल्लाह ही की है एंड में, चाहे वह कुन्ना लहुम हाफिजीन हो, चाहे वह कुन्ना भी कुल्ली शेइन आलिमीन हो, फिर चाहे कुन्ना फाइलीन है, कुन्ना ले हुक्मिहिम शाहिदीन है, सब बातों में एंड में यही है, कोई चीज भी मुतासिर होने की नहीं, पीछे करने वाला उस जात को देखो, आप एकदम चीजों को देख के मरूब हो जाते हो, उससे इम्प्रेस, उससे इम्प्रेस, वो जो पीछे जिस जात ने ये देन जिसकी है उसको भी तो देखा करो, या जाहिर में ही खो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين